ಹೀನಂ ದಸದಸಯ ಚಾವದೀಹಿರಂ ಪಡಿಮಜಿಣಂ ವೋಕ್ಷಮಣಮಿವೂಣಂತರಂ ಅನಂತರುತ್ತುಂಗ ಸಣ್ಣಮೈ ದುಗ್ಗೇಜಂ. ಯಹ ಶ್ರೀ ವೀರಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಧೌಲಾ ಟೀಕಾ ಹೇ ಜೋ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ ಗ್ರಂಥ ಪರ್ ಲಿಖಿ ಹುಯಿ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಪುಷ್ಪದಂತ ಔರ್ ಭೂತಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕೀ ಥಿ. ಜೊ ಉಪದೇಶ ಹಮೇ ಮೂಲ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೇ. ಯೇ ಜೊ ಪಾಂಚವಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೇ ಧೌಲಾ ಕಿ ಅಭಿ ಅಪ್ನಾ ವಿಷಯ ಅಂತರಾನುಗಮ ಕಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಉಸ್ಮೇ ಹಮ 92 ಪೃಷ್ಠ ಪರ್ ಆ ಗಯೇ ಔರ್ ವೈಕ್ರೇಕ್ ಮಿಶ್ರ ಕಾ ಯೋಗಿಯೋ ಕಿ ಬಾತ್ ಚಲ್ ರಹೀ ಕಾಯ ಮಾರ್ಗಣಾ ಮೇ ವೈಕ್ರೇಕ್ ಮಿಶ್ರ ಕಾ ಯೋಗಿ. तो वैक्रेक मिश्र कायोगियों में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं? एक, दो और चार है? तो हमने कल देखा था वैक्रेक मिश्र कायोगी जीवों का मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतर. तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? पड़ सकता है. वैक्रेक मिश्र की बात है क्योंकि लगातार उत्पन्न होते हैं. तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई जीव देवनारकी में उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वहां अंतर पड़ गया. तो कितना हो सकता है? तो कम से कम एक समय हो सकता है और अधिक से अधिक 12 मुहूर्त बताए उन्होंने. ये तो कल बात हो गई थी. अब एक जीव की अपेक्षा वैक्रेक मिश्र का योगी और मिथ्या दृष्टि. तो वो जो अंतर्मुहूर्त काल है वैक्रेक मिश्र का योग का, उस काल में वो गुणस्थान, उस काल में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका गुणस्थान पलटे और वापस उस गुणस्थान में आवे, ऐसा नहीं हो सकता. तो इसलिए एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है ऐसा कहा था. ये कल हमने सूत्र भी पढ़ा था. अब उसके आगे वाला सूत्र जो वैक्रेक मिश्र का योग और सासाधन की बात अब करेंगे. कल हमें मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा वर्णन देखा था. अब 173 नंबर का जो सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे. शासन सम्मादिट्ठि असंयत सम्मादिट्ठिनम ओरालिय मिस्स भंगो. क्या कहते हैं? वैक्रेक मिश्र का योगी सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर औदारिक मिश्र का योगियों के समान है. ऐसा क्यों समान कहते हैं उसका भी समाधान करते. क्योंकि सासाधन सम्म हुआ है वो सम्य करना, सासाधन सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, क्रमशः एक समय और पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है. इनसे एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है. यानी कोई न कोई जीव सासाधन मिश्र का योग में अनेक जीव आते हैं तो वो आते हैं सासाधन से मिथ्यात्व में चले जाते हैं. यानी सासाधन में कोई ना कोई है ऐसा चलेगा. तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर भी पड़ सकता है. वैक्रिक मिश्र का योग में ही अंतर है तो इसमें भी अंतर हो सकता है. तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय और पल्लोपम का असंख्यात भाग है. परंतु एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि एक जीव की अपेक्षा वैक्रिक मिश्र का योग बना रहे और उसका गुणस्थान पलट कर वापस उसमें आए, ऐसी बात नहीं हो सकती. इसलिए उसमें अंतर नहीं है. ये तो हो गई इनकी बात. अब ये असंयत की भी बात कर रहे. सासाधन समय दृष्टियों की तो बात बताई, अब असंयत समय दृष्टि में बताते हैं. इससे असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास पृथक्त्व अंतर होने से. मिथ्या दृष्टियों में हमने नाना जीवों की अपेक्षा देखी थी अंतर कितना, 12 मुहूर्त देखा था. अब यहाँ सम्यक दृष्टि है, असंयत समय दृष्टि गुणस्थान है, वैक्रेक मिश्र का योग यानी उसमें जन्मने वाले जी, तो उसमें अंतर कितना हो सकता है? अधिक से अधिक मास पृथक्त्व. मास यानी महीना और पृथक्त्व यानी कुछ महीने. पृथक्त्व का अर्थ बिटवीन 3 to 9. परंतु जहां कोई पृथक्त्व का अर्थ अलग लिखा होगा तो वहां उतना समझना. हमने देखा ना पृथक्त्व कोटि वगैरह जो देखा था, पृथक्त्व कोटि पूर्व, उसमें पृथक्त्व को 95 को भी पृथक्त्व कहा था। तो जहां जो योग्य है और वहां वैसा लिखा होगा तो वहां वैसा समझना चाहिए। तो कहते हैं मास पृथक्त्व अंतर होने से तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, यानी वैक्रेक मिश्र काय योग में कोई असंयत समय दृष्टि है तो उसमें से वो गिर जाए, मिथ्यात्व में आ जाए और फिर वापिस दोबारा सम्यक तो प्राप्त करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैक्रेक मिश्र काय योग शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक होता है, जो अत्यंत अल्पकाल है उसका। इन वैक्रेक मिश्र काय योगी सासाधन और असंयत समय दृष्टियों के अंतर में कोई भेद नहीं है, यानी दोनों का अंतर कितना है कहेंगे तो एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है इतना कहेंगे। अब आगे वाला कायोग, आहार कायोगीसु, आहार कायोगी जोगीसु, आहार मिश्र काय जोगीसु, दो बताए ना, आहारक कायोग और आहारक मिश्रक कायोग। पमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। अलग अलग जीव आहारक में आते रहे, आहारक कायोग में, तो उसमें अंतर पड़ सकता है तो पड़ सकता है, तो कम से कम एक समय, यानी कितने ही प्रमत्त संयोग जीव आहारक कायोग और उत्कृष्ट भी बताएंगे, वर्ष पृथक ऐसा कुछ कहेंगे, यानी अंतर है, यानी इन बिटवीन लगातार भी बहुत काल तक चलेगा। वो हमने काल में देखा था पहले, लगातार नाना जीव आते रहे तो उसका काल हमने पहले देखा था चौथी पुस्तक में। देखो आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगियों में प्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब कहते उक्कस्य न वासपुधत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, यह नाना जीवों की अपेक्षा, यानी पृथक्त्व वर्ष तक अंतर पड़ा, कोई जीव आहार का योगी नहीं हुआ, ऐसे हो सकता है, फिर उसमें चालू हो जाएगा। अब एक दिवस एक जीव की अपेक्षा एक जीवम पड़ुच्च नथ्यंतरम निरंतरम, आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगियों में प्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। आहारक का योग और छठे गुणस्थान में है, तो इसका अर्थ क्या होता है समझ में, अंतर नहीं है छठे गुणस्थान का, या उसका अर्थ आहारक का योग जब तक है उसमें सातवें में जाकर फिर छठे में आया, ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले देखा था जो छठे का काल है वो छठे के भी छोटा काल आहारक का योग का हो, यानी उसमें वो आहारक शरीर बनना, वहां जाना, दर्शन करके वापस आना, या जो कोई उनके प्रश्न का समाधान होना और मूल शरीर में वापस लौटना, ये सब छठे गुणस्थान के काल से भी छोटा काल है, क्योंकि अंतर नहीं है कहा। यदि बीच में सातवें में जाकर लौटते छठे में तो बता देते एक सातवें वाला अंतर मुहूर्त है, वो इसका अंतर है छठे का, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ आहारक मिश्र का काल छोटा है, जब तक आहारक पर्याप्ति जो पांच, वहां भी छह पर्याप्ति होती है, वहां भी जब तक दो पर्याप्ति यानी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक आहारक मिश्र का योग है, और उससे संख्यात गुणा आगे का आहारक का योग है, काल की अपेक्षा संख्यात गुणा है। तो एक जीव की अपेक्षा निरंतर क्यों कहा, क्योंकि वो छठा गुणस्थान छोड़े अन्य जाए और फिर वापस लौटे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न है कुछ मगर वो काय बीच में आहारक का योग रहेगा क्या सातवें में, अपना क्राइटेरिया क्या है, आहारक का योग, आहारक का योग वो बदल जाएगा, वो औदारिक का योग हो जाएगा सातवें में जाने पर। देखो उसका कारण भी बताए, क्योंकि आहारक का योग या आहारक मिश्र का योग में अन्य योग या अन्य गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है। अब कारवाण का योगी उनकी बात करेंगे, कारमान का योग में गुणस्थान कौन कौन से कारमान का योगियों के? पहला, दूसरा, चौथा और तेरवा। तो कम्मय काय योगीसु मिच्छादिट्ठि शासन सम्मादिट्ठि असंयत सम्मादिट्ठि सजोगी केवलीनम ओरालिय मिस्सभंगो। कारमान काय योगियों में मिथ्या दृष्टि, सासादन समय दृष्टि, असंयत समय दृष्टि और सहयोग केवलियों का अंतर औदारिक मिश्र काय योगियों के समान है। वो जब काय योग शुरू हुआ था तभी वो शुरुआती में पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी और औदारिक मिश्र में ये गुणस्थान लिए थे, इनकी टोटल बात की थी वहां पर। अभी उसका कारण भी बता रहे, क्योंकि यानी कारमान काय योगी और मिथ्या दृष्टि हरेक को बता रहे। अभी मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव है, यानी मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की यानी हमेशा कोई ना कोई कारमान काय योग में मिथ्या दृष्टि रहेंगे ही, वो नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा कारमान काय योग मिथ्या दृष्टि को कब होता है? विग्रह गति में, एक, दो या तीन समय। जाने के लिए चार समय लगते ना, तो तीन मोड़ तक, तीन मोड़ करके जाएगा तो मोड़ तक ही कारमान काय योग, अंतिम में उसका वो तो औदारिक मिश्र शुरू हो जाता है। तो इतने अल्पकाल में गुणस्थान मिथ्यात्व में से तो वो सम्यक तो हो ही नहीं सकता विग्रह गति में, यानी पलट कर अन्य गुणस्थान में जावे और वापस लौटे, ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसमें अंतर नहीं है। एक बात हो गई। सासादन सम्यक दृष्टियों का नाना जीवगत जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर से, नाना जीव उसमें आते रहे तो उसमें भी अंतर पड़ सकता है। तथा एक जीवगत अंतर के अभाव से एक जीव में तो अंतर पड़ ही नहीं सकता सासादन वाला, भले वो सासादन से मिथ्यात्व में चला जाएगा, बस फिर वापस लौटने का सवाल कहाँ है, उसको तो जघन्य काल भी उसका पल्ले का असंख्यात भाग है। फिर असंयत समय दृष्टि और कारमान का योग, तो असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवगत जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर मास पृथकत्व से, ये हमने पहले भी पढ़ा था औदारिक मिश्र में। तथा एक जीवगत अंतर का अभाव होने से यानी कारमान का योग और असंयत समय दृष्टि गुणस्थान, तो एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं रहेगा। और सहयोगी केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक्त्व अंतरों से, अलग अलग जीव कारमान का योग यानी प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में कारमान का योग होता है, तो एक के बाद एक के बाद केवली आते रहे तो लगातार हो सके, फिर अंतर पड़ेगा तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक अंतरों से। तथा एक जीव की अपेक्षा देखेंगे तो अंतर का अभाव है, एक जीवगत अंतर का अभाव होने से औदारिक मिश्र का योगी और कारमान का योगी इन दोनों की समानता पाई जाती है, वो कथन दोनों का एक जैसा ही होगा। इस प्रकार योग मार्गणा समाप्त हो। अब वेद मार्गणा की बात करेंगे। वेद मार्गणा में अंतर की बात चल रही है। वेदानुवादेन इत्थि वेदेषु मिच्छादिट्ठिनम अंतरम केवशिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि मिथ्या दृष्टि है या वो स्त्री वेद नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। फिर एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। तो वेदियों में अंतर यानी वो वेद नहीं बदलेगा, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है, वो चौथा गुणस्थान प्राप्त करते वापस लौटे या अन्य किसी गुणस्थान में जाएंगे, क्योंकि निचलेगा ना, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। दृष्ट मार्गी यानी बहुत बार सम्यक तो मिथ्या तो वारी करता है ना वो तो दृष्ट मार्गी स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीव के अन्य गुणस्थान को जाकर और लौटकर शीघ्र ही मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर अंतर मुहूर्त अंतर पाया जाता है। ये जघन्य से जघन्य अंतर की बात चल रही है। अब उत्कृष्ट बताएंगे। उक्कस्येन पनवन्न पलिदो वमाणि देशुनानि। त्रिवेदी मिथ्यादृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्लोपम है। ये 55 पल्लोपम क्यों लिया? हाँ, आप भी वही पूछने वाली थी। हाँ। स्त्रीवेदी जीव कहाँ कहाँ हो गए? हाँ, देव में, मनुष्य में और तिर्यंच में। इनमें कौन से जीव की मैक्सिमम आयु होगी? हाँ, भोग भूमि में भी जाएगा तो कितना है? 3 पल्ले। और देवों में 55 पल्ले। इसलिए वो देवी लिया, देवी की आयु ली है। वहाँ वही तक उत्पन्न होते, ऊपर कोई उत्पन्न नहीं होते। उत्पन्न होने की अपेक्षा ऊपर कोई है ही नहीं है। हाँ, ऊपर जाने वाली होती। अच्छा, हम देखेंगे। हाँ, वहाँ देवियों की आयु तो कम होती है, सौदर में देवों की आयु ज्यादा है। दो सागर जो है वो देवों की आयु है, देवियों की नहीं। देखो यहाँ समझाया कैसे, तो जैसे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक पुरुष वेदी, क्योंकि अभी स्त्री वेदियों में उत्पन्न करण है ना, अथवा नपुसक वेदी जीव 55 पल्लोपम की आयु स्थिति वाली देवियों में उत्पन्न हुआ, फिर 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया, और आयु के अंत में आगामी भव की आयु को बांध कर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व में वापस लौटाना चाहिए ना, मिथ्यात्व का अंतर देखना है हमको। सम्यक्त के साथ आयु के बांधने से सम्यक्त के साथ ही निकला और मनुष्य हुआ, तो मनुष्य हुआ तो पुरुष वेदी हुआ ना, हुआ वो भी चला गया, उसका वेद भी चला गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तों से कम 55 पल्लोपम स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। आपका ऐसा प्रश्न है, जिसके 28 प्रकृति की सत्ता है मोहनीय की, वो मिथ्यात्व में जाता है तो क्या वो स्त्री वेदी होता है? ऐसा नियम नहीं है। जन्म ले सकता है, क्योंकि पहले सम्यक तो किसी ने प्राप्त किया था, बाद में मिथ्या दृष्टि हुआ है, तो मिथ्या दृष्टि होता है तो 3 वेदों में से कोई भी वेद उसको हो सकता है। अभी कहाँ जन्मने वाला है? नरक में तो सभी नपुसक वेदी होंगे, और अन्यत्र भी मनुष्य 3 में जाएगा तो तीनों ही वेदों में से कोई एक वेद होगा उसको। देवों में भी पुरुष वेद या स्त्री वेद, यानी मिथ्यात्व अवस्था में तो तीनों वेद है ही है, बाद में वो सम्यक तो प्राप्त करेगा और सम्यक्त के साथ मरता है, तो नियम से नरक को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जावे तो उसको पुरुष वेद ही होगा। देखो पहले आदेश प्ररूपणा में, यानी जब हमने मार्गणा की बात की थी तभी, 6 पृथ्वियों के नारकियों में तथा सौधर्मादि देवों में बद्धायुष्क सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व के द्वारा निकाला था, किंतु यहाँ 55 पल्लोपम की आयु स्थिति वाली देवियों में उस प्रकार से नहीं निकाला। यहाँ पर इसका कारण जानकर कहना चाहिए। वहाँ जो बद्धायुष्क जो था जीव, सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्यात्व में जाने के बाद निकाला था। देखो अब 6 पृथ्वियों के नारकियों में आदेश प्ररूपणा शुरू हुई थी, यानी नरक गति का जो था ना, नारकियों का उत्कृष्ट अंतर। तेतीस सागरों पर हमने देखा था उत्कृष्ट अंतर। कौन से गुण स्थान की बात चल रही है यहाँ पर? मिथ्यात्व की है। हाँ, सातवें में तो मिथ्यात्व में जाता ही है। मिथ्या दृष्टि असंयत नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरों में, हाँ 23 पृष्ठ पर ही मैं पढ़ रही हूँ। यानी अपने अपने नरक की जो स्थिति होगी उतना अंतर। देखो 23 सूत्र का अर्थ लिखा है वहाँ पर, वहाँ पर भी लिया मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई तिर्यंच अथवा मनुष्य नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। ये तो सातवीं नरक है, परंतु अन्य नरकों में भी अपनी अपनी स्थिति प्रमाण लेना। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, वो हमने करेक्शन किया था, अंतर को प्राप्त हुआ पहले लेना, और फिर आयु के थोड़े अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी अंत में उसको मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ कहा था। वहां तो सातवें नरक का नारकी इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ था, अंतर बढ़ाना था इसलिए। अब यहाँ क्या कहते हैं, देवों में भी ऐसा देखा था ना हमने, देवों के निकालो, देवों की कहाँ, पेज नंबर 29 34। हाँ सातवीं पृथ्वियों में अपनी अपनी जो उसकी स्थिति है उसमें थोड़ा कम मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ था, और वहां भी उपशम सम्यक्त में से वो गिरकर सासादर में आया था, वो उसका समय घटाने के लिए। अभी यहाँ कहते हैं वो तो देखो, ये देवों की भी बात हमने देखी थी ना, किसके बाद मनुष्य सौधर्म देव की बात कहाँ है, देव का मिथ्या दृष्टि देव का अंतर कहते हैं। ये देवों की मार्गणा 59 वगैरह वहां पर है। हाँ देवों का उत्कृष्ट अंतर, मिथ्या दृष्टि देवों का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। उसके नीचे की लाइन पढ़ना, चार अंतर्मुतों से कम अपनी अपनी आयु स्थितियां, तो वहां भी उनमें अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ था ऐसा लिखा था, यही बात यहाँ बताना चाहते हैं। परंतु यहाँ मिथ्यात्व में प्राप्त होता ऐसा नहीं लिया है, क्योंकि वो आगे अभी स्त्री वेद समाप्त करना है ना, तो नियम से वो पुरुष वेद ही रहेगा, इसलिए सम्यक्त्व के साथ मरेगा ऐसा लिखा। अब अगला सूत्र हम पढ़ेंगे, अपना पेज 95 पर आया, 95 पृष्ठ पर। एक जीव की अपेक्षा कथन करते हैं, एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन फलिदोवमस असंख्य यदि भागो अंतमोत्तम। ये सासादन और सम्यक मिथ्यादृष्टि की बात चल रही है। मैंने ऊपर पढ़ना रह गया, 181 पढ़ना था पहले। शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्चोगम। यानी स्त्रीवेदी, स्त्रीवेदी शब्द लगाना पीछे, स्त्रीवेदी सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा ओग के समान अंतर है। जगन्य एक समय और उत्कृष्ट वो पल्ले का संख्या, यह सूत्र सुगम है। अब स्त्रीवेदी सासादन समय दृष्टि का भी एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन फलिदोमस असंख्य यदि भागो और अंतर्मुत अंतमोत्तम, ये तीसरे गुणस्थान के लिए। स्त्रीवेदी सासादन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः लाला ना बीच में, दो गुणस्थानों की बात एक सूत्र में बताते, इसलिए क्रमशः पल्लोपम का असंख्यात्व भाग और अंतर्मूर्त है। अभी हमें मालूम है ना असंख्यात्व भाग क्यों, क्योंकि दोबारा जब उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा और सासादन में आएगा तब उसका अंतर सिद्ध होगा। यह सूत्र भी सुगम ही है। अब उत्कृष्ट की बात, उक्कस्येन फलिदोवमस सदपुधत्तम, फलिदोवम सदपुदत्तम यानी शतपृथक्त्व। स्त्री वेदी सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शतपृथक्त्व है, यानी 100 पल्य, और वो भी उसमें भी कितने 100, तो पृथक्त्व 100, तो उसका अर्थ बताते हैं। जैसे अन्य वेद की स्थिति को प्राप्त कोई एक जीव सासाधन गुणस्थान के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ, यानी सासाधन के साथ स्त्री वेदी हुआ, अन्य वेद वाला कोई एक जीव सासाधन गुणस्थान में आया, एक समय उसका अवशिष्ट रहा, तो अभी वो मिथ्यात्व में जाने वाला है, तो उसके पहले मरा, तो स्त्री वेद और सासाधन गुणस्थान उसका एक समय के लिए है। एक समय सासाधन गुणस्थान के साथ दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी अभी वो स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि हुआ, यानी स्त्री वेदी सासाधन का अंतर चालू हो गया। अब अधिक से अधिक स्त्री वेद में कितने काल तक भटकेगा वो पूरा काल ले लेना, अभी कौन सी गति उसकी बात नहीं है, स्त्री वेद उसका होना चाहिए। स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके, ये स्त्री वेद की स्थिति यानी वो देवी हो गया, फिर मनुष्य में लगातार स्त्री वेद वाले, तिरियंचों में लगातार स्त्री वेद, ऐसा गिनना उसमें। स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंत में स्त्री वेद की स्थिति में एक समय अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को गया, अंतर पूरा करना है ना अंतिम समय में, और फिर वहीं पर पहले समय में मरेगा, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः मरा और अन्य वेद को प्राप्त हो गया। अन्य वेद को प्राप्त कराना चाहिए क्योंकि अभी उसका स्त्री वेद का काल समाप्त हुआ है। इस प्रकार दो समयों में कम पल्योपम शतपृथक्त्व काल स्त्री वेदी सासाधन समेत जीव का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। ये पल्योपम शतपृथक्त्व काल जो है वो स्त्री वेदी की उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें तिरियंच में संगी असंगी के स्त्री वेदी वाले के भव हो गए लगातार, और मनुष्यों के भी स्त्री वेदी वालों के भव हो गए, और देवों के जो कोई बीच में हो सकते हैं, ये सब मिलकर पल्योपम शतपृथक्त्व हो जाए, ये उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। वहां एक समय में वो सासाधन के साथ स्त्री वेदी था, अब यहाँ तो बात थोड़ी बदलेगी, ज्यादा का टाइम देना पड़ेगा। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी जीव देवियों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। देवियों में क्यों उत्पन्न कराया, तिरियंच और मनुष्य भी हो सकता था, हाँ क्यों, कितना काल लगता, ये जो पहला एक ही अंतर मुहूर्त में विशुद्ध होकर तीसरे में जा सकता है, मनुष्य और जो तिरियंच स्त्री वेदी है गर्भ में काल बिताना पड़ता है ना, यानी उनके लिए अधिक काल लगेगा, इसलिए देवियों में पहले में पहले अन्य वेद से देवियों में आया, वहां तीसरा गुणस्थान प्राप्त होगा ना, तो सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर प्राप्त हुआ। अब उसके बाद जो है स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतर में नहीं है अंत में चाहिए, ऊपर क्या है, स्त्री वेद दिठ्यम परिभ्रमीय अंते सम्मामिच्छत्तम गदो, वो र निकाल देना, अंत में यानी अंतिम जो स्त्री वेद वाला भव था उस भव के भी अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। अभी उसके बाद वो सम्यक मिथ्यात्व में तो मरेगा नहीं, तो पहले जिस गुणस्थान में आयु बांधी थी उसमें जाके पहले या चौथे में फिर मरेगा, पीछे जिस गुणस्थान से आयु को बांधा था उसी गुणस्थान को प्राप्त होकर अन्य जीवों में उत्पन्न हुआ। अन्य जीवों में यानी उसका वेद भी बदली हो गया, अन्य जीव का अर्थ वो होता है अन्य वेद में उत्पन्न हुआ। एक्चुअली जीवे लिखा है, ऊपर तो वेदे लिखा है, देखो लद्दम अंतरम जेन गुणेन आउम बद्धम तम गुणम पड़ी व जियने प्राप्त होकर अन्न वेदे वो वर्णो, अन्न वेदे चाहिए यानी अन्य वेदों में उत्पन्न हुआ, जीवों में नहीं। वो ऊपर दिया है प्राकृत अच्छा है, हम तो कंपेयर कर सकते हैं। अन्य वेदों में उत्पन्न हुआ इस प्रकार, जहां जहां हम करेक्शन करते हैं ना वहां ऊपर की जो प्राकृत लाइन है वहां अंडरलाइन कर सकते हैं, तो हमने कहां से करेक्शन किया है ख्याल में आता है। इस प्रकार छह अंतर मूर्तों से कम स्त्री वेद की स्थिति सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। कौन सा सम्यक दृष्टि? स्त्री वेदी सम्यक मिथ्यादृष्टि। अब आगे यानी पहला पॉइंट उन्होंने देवियों में उत्पन्न करना कर एक अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्या तो गया है और वहां से शुरुआत की। अब असंयत की बात करेंगे, स्त्रीवेदी असंयत। असंजत सम्मादिठि पहुड़ी जाव अपमत संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम। अ के ऊपर बिंदी चाहिए, अतरम हुआ है अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती स्त्री वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। हमेशा ही कोई ना कोई स्त्री वेदी वाले जीव उसमें उन गुणस्थानों में होंगे। स्त्री वेदियों में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 9। ये द्रव्य वेद नहीं लेना, भाव वेद लेना। अभी तो हमने अप्रमत्त की बात की नहीं है, अप्रमत्त तक तो बात बताई है, यह सूत्र सुगम है। हाँ स्त्री वेद ने केवल स्त्रियां ऐसा ही हमें लगता है, जैसे अभी हमने देवियों की बात की थी तो ऐसा लगता है ना वो स्त्रियां ही होगी, परंतु देवियों में ऐसा है जो द्रव्य का वेद है वही वहां भाव का वेद होता है। स्वर्गों में तो और भूभूमि में भी पुरुष है, द्रव्य से पुरुष है वो पुरुष वेदी है, भाव से ये द्रव्य से स्त्री वो भाव से भी स्त्री है, परंतु मनुष्यों में द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री वेद है, वही तो जाएंगे ना वहां नवे गुण स्थान में, स्त्री वेद का उदय होता है उन जीवों को। हाँ एक भाव में वही वेद चालू रहेगा, वो वेद जैसे योग पलटते हैं कषाय पलटते हैं वैसा वेद का पलटना उस भाव में उस एक आयु में नहीं होगा, ये हमने इसी में पढ़ा था पहले। इसीलिए इतने पृथक्त्व को इतना पल्लोपम ने पृथक्त्व शत ऐसा कुछ बताया ना, भी पल्लोपम शत पृथक्त्व स्त्री वेद चला रहा। देखो एक जीवम पड़ुच जहन्ने न अंतोमोत्तम। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ता है ना, क्या पड़ता है? गुणस्थान बदलता है। वेद वही का वही रहकर क्योंकि मार्गणा फिक्स रखना है और गुणस्थान को पलटाना है। उक्त गुणस्थान वाले स्त्री वेदियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी वो अन्य गुणस्थान को प्राप्त होगा, वापस उस गुणस्थान में आएगा, क्योंकि अन्य गुणस्थान को जाकर और लौटकर उसी ही गुणस्थान को आए हुए जीवों का अंतर मुहूर्त अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट अंतर बताएंगे। उक्त से न पलिदोवम सदपुदत्तम। उक्त गुणस्थान वाले स्त्री वेदियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य नहीं, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शतपृथक्त्व है। पल्योपम शतपृथक्त्व ये स्त्री वेदियों की उत्कृष्ट स्थिति है। लगातार स्त्री वेदियों में उत्पन्न होता रहे तो अधिक से अधिक कितने काल तक? तो पल्लोपम शतपृथक्त्व। अब दोनों ओर से उसके उतना गुणस्थान प्राप्त होने का जो काल है उसको छोड़ देंगे दोनों तरफ से और फिर उसका अंतर बताएंगे। यहाँ बता रहे हैं इनमें से पहले स्त्री वेदी असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह के 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव देवियों में उत्पन्न हुआ। ये बार बार देवियों में क्यों उत्पन्न करा रहे हैं? क्योंकि वहां ये जो पहला जो अंतर्मूर्त है जिसमें सम्यक प्राप्त कर सकता है वो बहुत छोटा है, इसलिए वहां लिया उसको। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। आप कहेंगे समूर्छन तिर्यंचों में भी तो जल्दी प्राप्त करता है जीव अंतर्मूर्त में, परंतु वो उनका वेद कौन सा है? नपुसक वेद है। उनमें स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष वेद नहीं होता, इसलिए यहाँ देवियों के लिए बात पहले लिए। देखो वहां उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्ति पूरी हुई, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। तो वेदक सम्यक में एक अंतर्मूर्त रहेगा, क्योंकि हमको अंतर देखना है ना। तो मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी उसका अंतर शुरू हो गया। स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक्त में क्यों डाला? हाँ पिनांग भाई, आपको याद है, कुछ ख्याल है? फिर दोबारा, हाँ लंबा का है ना, पल्लोपम शत पृथक्त्व। और हम तो देखते हैं पल्लोपम के असंख्यात्व भाग में दोबारा उपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, यानी उसको उपशम होगा फिर वेदक नहीं होगा उतने काल में, इसलिए ये बात की। स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, और बाद में भी अंतर घटाना होगा उनको, यानी उसको फिर जल्दी निकालना है ना वहां से, तो शासाधन में भेजेंगे फिर। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ प्रथमोपशम सम्यक्तों के काल में। छह अवलिया अवशेष रहने पर देखो वहां से पश्चात वाला काल घटाना है, पूरा प्रथमोपशम का काल लेते तो वो अंतर में से घटाना उसको घटने जाता, तो आगे वाला उसको घटाया, छह अवली घटा दी उसमें। अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को जाकर मरा और अन्य वेद को गया, उसका वेद परिवर्तन हुआ। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम पल्लोपम शत पृथक्त्व प्रमाण अंतर होता है। ये चौथे गुणस्थान की बात है, स्त्री वेदी चौथा गुणस्थान। तो शंकाकार पूछता है सूत्र में देशों ने ऐसा वचन क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि पृथक्त्व इस पद से, पद के निर्देश से ही उस देशोन्नता का ज्ञान हो जाता है। पृथक तो कहें नहीं, कुछ पल्य उसमें जो कुछ यथायोग्य घटाना है उसमें घटा सकते हैं, आगे पीछे का जो कुछ घट जाता है। अब स्त्री वेदी और संयता संयत की बात करेंगे। स्त्री वेदी संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ। मिथ्या दृष्टि है परंतु मोहनीय की 28 प्रकृतियां हैं। मिथ्या दृष्टि है आपने कैसे समझा? हाँ 28 प्रकृति है मगर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? हाँ ये स्त्री वेदी है ना, तो भले मोहनी की 28 प्रकृति की सत्ता है और संयता संयत होता जन्म के समय तो ये तो नियम से पुरुष वेदी होता, तो हमें तो स्त्री वेदी चाहिए। तो जो स्त्री वेद के साथ जन्मता है, यानी जन्म से ही उसका स्त्री वेद है, तो वो तो सम्यक्त्व के साथ आया हुआ नहीं है, अन्य वेदी जीव स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भ में रहकर, अब ये कम से कम पहले टाइम बताना है इसलिए वो तिर्यंच ले लेंगे दो मास वाला। दो मास गर्भ में रहकर निकला और दिवस पृथक्त्व से विशुद्ध हो वेदक सम्यक्त्व और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। कम से कम काल में कौन आ सकता है? तो ये तिर्यंच आ सकता है, जो बात मनुष्य नहीं कर सकते ना वो तिर्यंच कर सकते, और हमने अपने को पराधीन माना है ना। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी पांचवा गुणस्थान छूट गया उसका, मिथ्यात्व में गया तो अंतर शुरू हो गया, पांचवे का अंतर शुरू हुआ। त्रिवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में प्रथमोपशम सम्यक्त्व और देश संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, क्योंकि हमको संयमासंयम का अंतर देखना है, इसलिए दोबारा पांचवें गुणस्थान को प्राप्त हुआ। कब? ये बीच में इतना सब भटक कर त्रिवेद वाली जो स्थिति है पल्लोपम शतपृथक्त्व बीच में, उतना जाने के बाद पुनः सासाधन गुणस्थान को जाकर मरा और देव हुआ, क्योंकि सासाधन को भेजना है तो छह अवली पहले मरेगा ना, और मर के इमीजिएट वहां मरेगा और देव में चला जाएगा पहले भाग में मरकर। और ये पहले तो हमने जो देखा था ना, त्रिवेदी असंयत समय दृष्टि, मरा और अन्य वेद को प्राप्त हुआ इतना ही बताया। संयता संयत में मरा और देह हुआ ऐसा लिखा, ऐसा क्यों? हाँ, संयता संयत कौन हो गए? मनुष्य और तिरंच हो गए, और वे तो देव में ही जाएंगे, क्योंकि उसी के साथ उन्हें आयु भी बांधी है। अब आयु की बांधी की बात नहीं है, मगर देवायु बांधी होगी तो ही संयता संयत प्राप्त कर सकते हैं। और अभी सासाधन में पहले भाग मरे हैं, भाग में मरे हैं तो देव हो गए। दूसरी बात, वहां तो देवियों को भी वो चौथा गुणस्थान प्राप्त हो सकता था, तो वहां से वो तो लौट कर मनुष्य में आ जाएंगे। ये जो पहले हमने देखा ना त्रिवेदी असंयत समय दृष्टि का अंतर, वहां भी सासाधन गुणस्थान में मरा था और यहां भी मरा, मगर वहां तो देवी भी हो सकती थी, यहाँ संयता संयत है इसलिए मरकर अभी वो देव में चला जाएगा। यानी एक भी शब्द ऐसे फिजूल का नहीं है, बराबर सोच सोच कर बताया सब। इस प्रकार दो मुहूर्त, मुहूर्त यानी यहाँ अंतर मुहूर्त समझना, दो मुहूर्त और दिवस पृथक्त्व से अधिक दो मास, इतना सब कम करना, किसमें से? स्त्रीवेद की स्थिति, स्त्रीवेदी संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है, स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से। पहले हमने देखा था ना, दो मास गर्भ में गया, फिर दिवस पृथक्त्व, फिर विशुद्ध हुआ, वेदक समय तो प्राप्त हुआ, फिर गिरा वगैरह वगैरह वो सब। अब स्त्रीवेदी प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्रीवेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। स्त्रीवेदी संयता संयत में तो ऐसी कंडीशन नहीं थी, और वहां तो गर्भज तिर्यंचों में उत्पन्न कराया था, तब यहाँ क्यों ऐसा किया? चौथे गुणस्थान में तो देवियों में उत्पन्न कराया था, संयता संयतों का अंतर देखने के लिए तो तिर्यंचों में उत्पन्न कराया पहले पहले। हाँ, तो छठा गुणस्थान है तो मनुष्यों में ही होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, वो मुंह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला अन्य वेदी जीव स्त्रीवेद के साथ जन्मा है, यानी मिथ्यात्व में जन्मा है, बराबर, परंतु अंदर वो 28 की सत्ता है। गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष का हो, वेदक सम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। अब उसमें से प्रमत्त में आएगा और फिर जब आगे चला जाएगा तो अंतर चालू हो जाएगा, पुनः प्रमत्त संयत हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में प्रमत्त संयत हुआ। जब स्त्रीवेद की स्थिति पूरी होने को आई, तब अंतिम भव में कौन सा भव होगा? फिर मनुष्य, फिर संयत, प्रमत्त संयत होना है ना, फिर प्रमत्त संयत हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात मरा और देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष और 3 अंतर्मूर्तों से कम स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर लब्ध हुआ। स्त्रीवेद की स्थिति हमने देखा ना, पृथक्त्व शह पल्योपम शत पृथक, ये स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति। इसी प्रकार से स्त्रीवेदी अप्रमत्त संयत का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि पहले वो सातवें में आता है, फिर छठे सातवें होता रहता है, और फिर बाद में सातवें से छठे होकर नीचे चला जाएगा, अंतर चालू हो जाता है, और अंतिम भाव में फिर सातवें में आता है तो अंतर समाप्त होता है। अब अगला, दोन्नम उवसाम गाणम अंतरम केव चिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्न उपकसम ओघम। अब दो उपशामकों का अंतर बता रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं, वेद ही नहीं रहता, वेद सहित जो है आठवा नवा गुणस्थान ही है, नवे के प्रथम भाग में वेद है, बाद में वो अपगत वेद कहो या अवेद कहो, वेद नहीं रहता वहां, वेद का अभाव हो जाता है, इसलिए यहां दो ही गुणस्थानों की बात की। तो स्त्री वेदी, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। तो हमने देखा था उपशम श्रेणी वाले का अंतर जघन्य से एक समय होता है और उत्कृष्ट से वर्ष पृथक का कुछ कहा था ना वहां, देखिए यहाँ लिखा होगा, क्योंकि जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, इनकी अपेक्षा ओघ से इनमें कोई भेद नहीं है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहेंगे, एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र सुगम है। पिनांग भाई बोलो कैसा होगा, स्त्रीवेदी अपूर्वकरण गुणस्थान, अंतर कैसा लेंगे हम, आठवें से दोबारा आठवें में आना चाहिए। हाँ अशोक भाई आपका, हाँ आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां फिर वापस आया, नौवे में आते ही फिर वो वेद का उदय चालू हो गया और फिर आठवें में आया, आवेद हो गया था, तो सातवें में जाकर वो फिर वापस लेना है। देखो देखो, तो दोबारा जो उपशम श्रेणी मानता है उसको ले लेंगे, उतरने वाला आठवां है, सातवें में आया और फिर उपशम श्रेणी मांडी, वेद रहना चाहिए, वही वो कहते वो अपगत वेदी है, वही तो उतरने वाला आठवां है, सातवें में आया और फिर दोबारा उपशम श्रेणी मांडी। अब कहते उक्कस से न पलिदोवम सदपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शतपृथक्त्व है, वो इसका ऐसे ही कहेंगे उपशम श्रेणी मांडी थी और फिर वो बीच में इतने भोग किए, देखेंगे जैसे मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्री वेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन कर दर्शन मुनि का उपशम कर, यानी द्वितीय उपशम किया उसने, अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय और पुनः प्रतिनिवृत्त हो सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण हो गया। देखो पूरी श्रेणी करके फिर दोबारा आठवें में लाया है, क्योंकि बीच में वो अपगत वेदी होगा वो नहीं चलेगा, अरविंद भाई ने कहा ना, उन्होंने समझे, अभी स्त्री वेदी है वो, उपशम श्रेणी चढ़कर वापस लौटा हुआ आठवें तक आया हुआ है, अब अंतर शुरू नहीं किया, अब कहेंगे अंतर शुरू हुआ, नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, वहां सातवें में आया छठे सातवें किया और कहीं चला गया, वो तो उसका अंतर चालू हो गया, और स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में संयम को प्राप्त हो कृतकृत्य वेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, यानी वो बाद में जो टाइम वेस्ट होता है ना उसको कम करने के लिए पहले ये सब कृतकृत्य वेदक भी हुआ और उसी के साथ श्रेणी भी चढ़ी, अपूर्वकरण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पीछे निद्रा और प्रचला के, प्रचाल के हुए, प्रचला के। बंध विच्छेद हो जाने पर मरा और देव हुआ, यहीं पर क्यों? हाँ, वो क्षायिक समय दृष्टि हो गया, कृतकृत्य वेदक था, तो आगे का टाइम कम करना था ना, क्योंकि उसको पूरी उपशम श्रेणी चढ़ाते उतराते फिर क्षपक हो जाता, वो मान लेते तो टाइम ज्यादा जाता। आठवें के पहले भाग में नहीं मर सकता था, इसलिए पहला भाग समाप्त होते ही वहां मर गया। फिर देव में चला गया तो उसका पुरुष वेद भी शुरू हो गया। आगे का टाइम कम करना था इसलिए ये शॉर्टकट ले लिया। हाँ, निद्रा और प्रचला के बंध विच्छेद, इसकी हमने बात की थी आठवें के पहले भाग में। निद्रा और प्रचला का बंध का विच्छेद होता है, बंध की विच्छित्ति होती है ना, वहां तक इनका बंध है, उसके आगे बंध नहीं है। ये पहला भाग हुआ, हम इक्वल सात भाग करेंगे या सात भाग करेंगे, उसमें पहले भाग में इन दोनों की विच्छित्ति होती है, यानी पहले भाग में तो है बंध, उसके अंत तक बंद है, आगे नहीं है, उसको कहते हैं पहले भाग में बंध विच्छित्ति हुई। छठे भाग में वो अन्य 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है और सातवें में चार की होती है। तो ये पहला भाग, इस पहले भाग में मरण नहीं होता उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के। आठवें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता है, ये भाग समाप्त होते ही वो मर गया, इसलिए वो अंतर बढ़ा दिया। बाद वाला जो है ना, आठवें में आया और आठवें के एक सप्तमांश भाग रहकर मर गया। यानी आगे का टाइम हमने कट डाउन किया, पहले तो हमने देखा था पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने के बाद अंतर शुरू हुआ था, अब यहाँ तक उसका अंतर ले लेना। इस प्रकार 8 वर्ष और 13 अंतर्मूर्तों से, यानी पहले जब 8 वर्ष में वो संयम प्राप्त किया था और फिर उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा था, वहां तक वो पहले लेना। तथा अपूर्वकरण काल के सातवें भाग से हीन, सातवां भाग ने पहला भाग है, इसके अपूर्वकरण का सातवां है, पहला जो भाग है वो 1/7 है ना हिस्सा, सातवां हिस्सा है, पूरे अपूर्वकरण का सातवां हिस्सा है, इसलिए सातवां भाग कहा। यानी 7th भाग ऐसा नहीं लिखना, वो यानी उसका 1/7 वो हिस्सा उसका ऐसा लेना, सात भाग नहीं लेना, सातवां भाग लेना है। यानी एक अकेला एक पहले भाग का जो काल है उसको सातवां हिस्सा क्या, सातवां भाग। उत्कृष्ट अंतर है अनिवृत्ति, वो ती डबल चाहिए। अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी इसी प्रकार से अंतर होता है, उसमें तो एक अंतर्मूर्त पहले अंतर शुरू हो जाएगा, उत्तर के आया है 9वें से 8वें में गया, उसका अंतर चालू हो गया, ऐसा ही होगा ना, और लौट कर आएगा तो 8वें से 9वें में आया, वहां तक उसका अंतर ले लेना। अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी इसी प्रकार से अंतर होता है। विशेष बात यह है कि उनके 13 अंतर्मूर्तों के स्थान पर 12 अंतर्मूर्त और एक समय कम कहना चाहिए। ये एक समय वाली बात कहां से लाई? देखो ऊपर 13 अंतर्मूर्त देखे थे, वहां आठवें में तो सातवां भाग समाप्त होने पर मर गए थे, नौवें में आते ही एक समय में ही मर गए, यानी अंतर तो समाप्त हुआ, नौवे में पहुंचते ही अंतर समाप्त हुआ और एक समय में मरे, तो आगे भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, इसलिए पहले ये 12 अंतर्मूर्त और एक समय इतना लेना यहाँ पर। अब आगे दोन्नम खवानम अंतरम केवचिरम कालादहो दी नाना जीवन पड़ुच्च जहन्य न एक समयम, यानी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा ही अंतर पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा तो हम अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही गुणस्थान फिर वापस नहीं आ सकता है। स्त्री वेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। अब उक्कस्य न वासपुदत्तम्। स्त्रीवेदी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। जब हमने सामान्य से बात की थी क्षपकों का अंतर कितना है एक जीव की अपेक्षा, ये नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्षपकों का, वर्ष पृथक्त्व उपशामकों का देखा था 6 महीना उत्कृष्ट अंतर। यहाँ श्रीवेदी लिया ना, 6 महीने में पुरुष वेदी जाएंगे, नपुसक वेदी जाएंगे। स्त्री वेदियों में अगर उत्कृष्ट अंतर पड़ा तो कितना पड़ सकता है, वो वर्ष पृथक्त्व की बात है। हाँ कोई बात नहीं। हमने पहले देखा था स्त्री वेदियों वालों को वो विशुद्धि वाले या ऊपर के गुणस्थानों में उनकी संख्या कमी हो जाती है, क्योंकि देखिए ना जन्म से जो सम्यक दृष्टि है अनेक भाव में ऊपर नीचे करते आए हैं वो तो पुरुष वेदी हो गए। अब जो स्त्री वेदी है और उसी भाव में उन्होंने पुरुषार्थ किया ना, पुरुष वेदी कहो स्त्री वेदी, तो उनमें इसे ऊपर के गुणस्थानों की प्राप्ति दुर्लभ है। इसे पहले भी आया था तो उनमें अंतर वर्ष पृथक्त्व का पड़ सकता है। ये देखो नीचे उसका उत्तर भी दिया, क्योंकि अप्रशस्त्र स्त्री वेदियों का वर्ष पृथक्त्व के अतिरिक्त अन्य अंतर नहीं पाया जाता है। अप्रशस्त है ना स्त्री वेदी वाले, अप्रशस्त है उनमें ये जो विशुद्धि के परिणाम है वो पुरुष वेदियों की अपेक्षा उनका प्रमाण यहाँ ऊपर जाने का प्रमाण कम होगा। एक जीवम पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम। एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि क्षपक के गुणस्थान है, वापस उसमें लौटने का सवाल ही नहीं है। यह सूत्र सुगम है। हाँ नपुसक वेद और स्त्री वेद दोनों ही अप्रशस्त वेद है और उनमें ये जो भावों की विशुद्धि है वो दुर्लभ है, रेरिटी है उनकी, होता नहीं ऐसी बात नहीं है। मोक्ष तो सभी तीनों ही वेद वालों की बताए, 9वें गुणस्थान में वेद का अभाव होता है तीनों ही जो, और वे उसी जीव भव में मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, होता नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु उनमें वो बात कठिनता से होती है, इसलिए उनकी संख्या कम है उन जीवों की, तो अंतर भी ज़्यादा होगा उनमें। यहाँ तो अंतर की बात चल रही है, हमने संख्या प्ररूपणा में भी देखा था इसकी बात, इसकी चर्चा की थी हमने, चर्चा स्त्री वेदियों की संख्या अलग अलग गुणस्थानों में। ये तो स्त्री वेदियों की बात पूरी होगी, अब पुरुष वेदी उसकी बात करेंगे। पुरुष वेदेशु मिथ्या दिट्ठि ओगम। पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव, यानी हमेशा मिथ्या दृष्टियों में पुरुष वेदी जीव हो गई, अभाव होने से एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त। पुरुष वेदी और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है तो अन्य गुणस्थान में चला जावे और वापस आवे, वो जघन्य अंतर्मुख। और उत्कृष्ट कुछ कम 266 सागरोपम अंतर की अपेक्षा ओघ मिथ्या दृष्टि के अंतर से पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टियों के अंतर में कोई भेद नहीं है। ये जो हमने सामान्य से बात की थी ओघ मिथ्या दृष्टियों की, कुछ कम 266 सागरोपम। मिथ्या दृष्टि का अंतर ने मिथ्या तो गुणस्थान में से सम्यक तो प्राप्त किया, मिथ्या दृष्टि का अंतर चल रहा है ना, और फिर सम्यक तो के साथ रहा अधिक से अधिक कितने काल तक, 266 सागरोपम, और फिर मिथ्या तो में आया, तो ये मिथ्यात्व का अंतर कहलाएगा। बीच में उसका पुरुष वेद कायम रहा। अब शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छा दिच्छिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समय। पुरुष वेदी सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। एक समय ऐसा है कि कोई भी जीव उसमें नहीं है पुरुष वेदी, ऐसा हो सकता है। यह सूत्र सुगम है। अब उक्कस्य न फलिदोमस असंख्य यदि भागो। उक्त जीवों का, उक्त यानी पुरुष वेदी, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व वाले और नाना जीव, उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्व भाग है, ये तो हमने बहुत बार देखा था। यह सूत्र भी सुगम है। अब 196 नंबर का, एक जीवम पड़ुच्छ जहन्नेन पलिदो वमस्य असंख्य यदि भागो अंतमोत्तम। सासादन के लिए एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल पल्य का असंख्यात्व भाग है, क्योंकि उतने काल तक दोबारा उपशम सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता, तो सासादन में कैसे आ सकता है, ये बात। पुरुष वेदी सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्व भाग कौमा देना और अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सुबोध है, ये हमने पहले बहुत बार देखा था। अब उत्कृष्ट बात करेंगे, एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे उत्कृष्ट का। उपकसेन सागरोम सदपुधत्तम, वहां पल्योपम शतपृथक्व कहा था, यहाँ सागरोपम शतपृथक्व कह रहे। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्व है। जैसे अन्य वेद वाला एक उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान में जाकर सासादन काल के सासादन गुणस्थान के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर पुरुष वेदी हो गया और सासादन गुणस्थान के साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ, द्वितीय समय में देखो क्या कहते हैं। अब ये वेद बदली किया ने क्या कहते हैं, ये मरा वहां सासादन गुणस्थान के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर पुरुष वेदी हुआ है ने, एक समय अवशिष्ट रहने में मरा और पुरुष वेदी हुआ। देखो ऊपर क्या लिखा है, हम देख ऊपर नहीं है लिखा, समझा मैं ऊपर का पढ़ रही हूँ। एक को अन्न वेदो उवसम समाधि शासनम गंतुण शासन धाये एगो समो अथिति पुरुष वेदो जादो, उत्पन्न हुआ है जातो है ने, उत्पन्न हुआ है ने, मरकर उत्पन्न हुआ। हमारे लिए वो वहां शब्द डालो, पुरुष वेदी हो गया ने, पुरुष वेद में उत्पन्न हुआ, ऊपर जातो शब्द है, खाली हुआ नहीं है उत्पन्न हुआ है। पुरुष वेदो जादो है ना, यानी हो गया का अर्थ वहां उत्पन्न हुआ। पहले क्या लिखा है, अन्य वेद वाला है, अन्य वेद में था तब वो औपशमिक समय तो प्राप्त किया, उसमें से सासादन में आ गया, सासादन में एक समय था तब मर गया, अब पुरुष वेद में उत्पन्न हुआ, ऐसा लेना। यानी वो पुरुष वेद के साथ सासादन उसका एक समय के लिए दिखा, पुरुष वेद तो चालू ही रहेगा परंतु अभी वो मिथ्या तो गुणस्थान में आ गया, यानी पुरुष वेदी सासादन का उसका अंतर चालू हो गया। द्वितीय समय में मिथ्यात्व जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। अब पुरुष वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके, मिथ्यात्व में है वो तो पुरुष वेद की जो उत्कृष्ट स्थिति है, पुरुष वेदी में मनुष्य भी आएगा, तिर्यंच भी आएगा, देव भी आएगा, तो उसमें जो कुछ उत्कृष्ट भ्रमण कर सकता है, भ्रमण करके आयु के अंत में उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण कर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। सासादन का अंतर देखना है इसलिए आयु के अंत में जो इतनी पूरी स्थिति पूरी हुई तो अंत में जाकर फिर उपशम सम्यक्ति हुआ और सासादन में आया। पश्चात द्वितीय समय में मरा, वहां भी सासादन का काल कम से कम लेना है तो द्वितीय समय में मरा और देवियों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि वेद अभी पलटा नहीं ना और पहले समय में ही मरा है, इसलिए द्वितीय समय में तो वो देवों में उत्पन्न होने योग्य काल है, इसलिए वहाँ देवियों में उत्पन्न। इस प्रकार उक्त जीवों का दो समय कम सागरोपम शतपृथक्त्व अंतर होता है। अब पुरुषवेदी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों की बात करेंगे। पुरुषवेदी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, सासाधन में तो एक समय में उसका शुरू हुआ था अंतर। देखो, दो छासठ सागर हमने जो देखा था तो मिथ्यात्व का अंतर देखा था। मिथ्यात्व का अंतर यानी वो सम्यक दृष्टि हुआ, दो छासठ सागर तक वो सम्यक दृष्टि रहा और पुरुषवेदी है इसलिए उसका कोई सवाल नहीं था। स्त्रीवेदी होता तो इतना उत्कृष्ट काल सम्यक्त्व के साथ स्त्रीवेद में नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका एक भव के बाद तो पुरुषवेद हो जाता। ख्याल है? तो उसमें मिथ्यात्व का स्त्रीवेदी का उत्कृष्ट काल कितना देखा था? 55 पल्ले, उसमें कुछ कम। अंतर यानी जो अंतर, हम यहाँ पुरुषवेदी है तो उसका सम्यक तो बना रहे और अन्य अन्य भवों में जाता रहे, ये बन सकता है उसका। यहाँ तो सासाधन की बात करें, पहले भी हमने असंयत की तो बात अभी करेंगे, अभी असंयत की बात आगे आएगी। देखो, अब सम्यक मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां उत्पन्न होगा, फिर अंतर मुहूर्त में वो सम्यक मिथ्या तो प्राप्त कर सकता है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला वहां उत्पन्न होगा, पुरुष वेदी है तो गर्भज होना चाहिए, या फिर अभी यहाँ कहाँ उत्पन्न होते, देवों में देखते कहाँ किया उसको उत्पन्न, देवों में करेंगे। पुरुषवेदी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव, अन्य वेद वाला लिया, क्योंकि पुरुषवेद की अभी यहाँ शुरुआत हो रही है, देवों में उत्पन्न हुआ। देवों में उत्पन्न इसलिए कराया कि वहाँ वो गर्भजों में उत्पन्न करते तो वो समय ज़्यादा बर्बाद होता, तो यहाँ जल्दी से जल्दी तीसरे गुण स्थान में लाना है। तो 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को जाकर, फिर सम्यक मिथ्यात्व में भी एक अंतर्मूर्त रहकर, फिर वहां से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी उसका तीसरे का अंतर चालू हो गया। अभी अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो उसका अंतर समाप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, तत्पश्चात अन्य गुणस्थान को जाकर अन्य वेद में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तों से कम सागरोपम शतपृथक्त्व पुरुषवेदी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। तो मेरा सवाल है, ये जीव मिथ्यात्व में मरा होगा कि सम्यक्त्व में? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। हाँ, तीसरे गुणस्थान में मरण है ही नहीं है, अन्य गुणस्थान में जाके मरेगा। तो हमने पहले हाँ, चौथे में जाके मरेगा तो पुरुषवेदी होगा। मिथ्यात्व में ही जाके मरना चाहिए, क्योंकि अन्य वेद में उत्पन्न हुआ लिखा है। और नरक में जाएगा तो कृतकृत्य बेल जाता है। हाँ। तो ये तीसरे के बाद वो तो मिथ्यात्व में जाकर वहाँ मरेगा। देखो, बहुत अच्छी बात, हम स्वयं ही प्रश्न उठा के सोचना चाहिए उसके बारे में। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, अब अगला सूत्र हम चौथे गुणस्थान की बात करेंगे। असंजत सम्मादिट्ठी पहुड़ी जाव अपमत्त संजदनम अंतरम केवचिरम कालादो होती नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक पुरुष वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि ये निरंतर गुणस्थान ही है नाना जीवों की अपेक्षा, और उसमें तीनों ही वेद वाले जीव हमेशा रहेंगे। अब जो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा पड़ेगा। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतोमोत्तम, उसका गुणस्थान पलटी हुआ और वापस उस गुणस्थान में आया तो उसका जघन्य अंतर कहलाए। उक्त गुणस्थानवर्ती जीवों का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा है। उक्त गुणस्थानवर्ती जीवों का एक जीव की अपेक्षा, ऐसा लिखना। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर, ये जघन्य अंतर, क्योंकि सूत्र में लिखा है ना एक जीवम पड़ुच। यह सूत्र भी सुगम है। अब उत्कृष्ट अंतर कहते हैं उक्कस्य न सागरोम सदपुधत्तम असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुष वेदियों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है। ये सागरोपम शतपृथक्त्व जो है वो पुरुष वेदियों की उत्कृष्ट स्थिति है। लगातार पुरुष वेदी होता रहे तो इतने लंबा काल है। अब उसमें घटाएंगे हम, स्टार्टिंग में जो कोई चौथे में आया है, चौथे से गिरकर मिथ्यात्व में चला गया, उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण वो पुरुष वेदी रहा, और अंतिम भव में अंत में फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तो असंयत का वो उत्कृष्ट काल होगा उसका। देखते यहाँ क्या कहते हैं। असंयत समय दृष्टि पुरुष वेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अभी एक एक गुणस्थान की अलग अलग करेंगे चर्चा। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवों में उत्पन्न हुआ, जल्दी सम्यक तो प्राप्त कराना है ना। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। क्योंकि वेदक सम्यक्त भी रहा एक अंतर्मूर्त, यानी चार अंतर्मूर्त गए फिर मिथ्यात्व में गया तो अंतर चालू हो गया। अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। जो उसकी स्थिति पूरी होने को आई तो अंतिम में उसने अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। अब उसको भी घटाना होगा तो क्या करेंगे, उपशम साधन में जाएगा तो कितने पहले जाएगा, एक समय पहले के छह अवली, क्योंकि वो आगे का काल घट के जाएगा उससे। उपशम सम्यक्त के काल में छह अवली अवशेष रहने पर साधन को जाकर मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। अभी कौन से देव होगा के देवी होगा, हाँ साधन में जाके होगा, उसको देव में डालना का देवी में डालना, पुरुष वेद उसका वेद अंतिम, पुरुष वेद की अंतिम स्थिति अभी उसकी स्थिति पूरी होगी नहीं, हाँ देवी में जाएगा, अन्य वेद में जाएगा ना। ऊपर कुछ लिखा है क्या, मदो देवेशु वर्णो, देवों में ऐसे खाली यानी जनरल बात की थी, परंतु वो देवी होगा क्योंकि पुरुष वेदी का वो तो अभी अंतिम भव है। उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी है पुरुष वेदी की, यानी ये करेक्शन तो नहीं अपने समझने के लिए, देवियों में उत्पन्न हुआ ऐसा हम करेंगे। उसका कारण भी समझना चाहिए ना, क्योंकि वो पुरुष वेद की वो स्थिति उसकी पूरी हो गई है, उसका योग यानी वेद बदलेगा अभी। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम सागरोपम शतपृथक्त्व पुरुष वेदी असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर होता है। अब संयता संयत पुरुष वेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अब यहाँ देवों में ले जाना कि नहीं ले जाना? नहीं जी। कोई एक अन्य वेदी जीव पुरुष वेदियों में उत्पन्न हुआ, 2 मास गर्भ में रहकर निकलता हुआ, ये कौन होगा? मनुष्य की तिर्यछा। दिवस पृथक्त्व से उपशम सम्यक्त्व और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। जब उपशम सम्यक्त्व के काल में 6 अवलिया रही तब सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हो, क्योंकि अभी हमको अंतर जल्दी शुरू करना है, इसलिए उपशम का पूरा काल नहीं लिया, 6 अवली पहले ही सासाधन में गया तो अंतर चालू हो गया। मिथ्यात्व को जाकर पुरुष वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और कृतकृत्य वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। क्यों बाद में वो कृतकृत्य होने में टाइम नहीं गवाना है। तो कृतकृत्य वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पश्चात अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के गुणस्थानों संबंधी 6 अंतर्मूर्त और मिलाए। इस प्रकार 2 मास 3 दिन और 11 मूर्तों से अंतर्मूर्तों से कम पुरुष वेद की स्थिति ही पुरुष वेदी संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी अंतिम भव में उसको मोक्ष प्राप्त कराया। हमने पहले ये बात देखी थी, वो तो अंतिम भव में हो सकता था कि उपशम समय तो फिर प्राप्त कराओ, फिर सासाधन में लाओ और फिर गिर जावे, परंतु ऐसा है ना, वहाँ 5वें गुणस्थान में उसके पश्चात संकलिष्ट होकर वापस नीचे के गुणस्थानों में आने के लिए और फिर वहाँ मरने के लिए, क्योंकि अन्य में चला जाएगा ना, पहले तो आयु नहीं बांध सकता था। 5वां गुणस्थान भी समाप्त हो गया, उसको पुरुष वेद भी समाप्त हो जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिथ्यात्व में जाके मरना पड़ेगा और बाद में आयु बांधनी पड़ेगी। ये सब घोटाला करने के लिए ज़्यादा टाइम जाता, तो उससे कम टाइम में वो मोक्ष चला जा सकता है, इसलिए अंतर बढ़ाने के लिए बाद में वो 7वां गुणस्थान फिर 6वां 7वां और फिर अपूर्वकरण वगैरह वो आगे की 6 अंतर्मूर्त इतने काल में वो मोक्ष चला जाता है। कम से कम काल बाद में रखने के लिए वो उसको कृतकृत्य वेदक भी पहले ही बना दिया, उसको पूरा क्षायिक समय दृष्टि भी नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए और एक अंतर्मूर्त वहां बर्बाद हो जाता है। यानी इसका जो 5वां का प्राप्त होने का काल, उसमें उसका क्षायिक समय दृष्टि उतने ही काल में हो जाता है, उसी के साथ हो जाता है। शंका, ये पूछ ही लिया है, अंतर प्राप्त हो जाने पर पुनः मिथ्यात्व को ले जाकर अन्य वेदियों में उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्या कारण है? हमारा तो सवाल पुरुष वेद का है, अन्य वेदियों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, पहले मिथ्यात्व में ले जाते और अन्य वेदियों में उत्पन्न कराते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस काल से मिथ्यात्व को जाकर और आयु को बांधकर अन्य वेदियों में उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होने वाले काल से संख्यात गुणा है, यानी सिद्ध बनने के लिए जितना काल लगता है उससे संख्यात गुणा काल मिथ्यात्व में जाकर आयु को बांधकर और मरकर अन्यत्र जाने के लिए लगता, इस अपेक्षा से उसे मिथ्यात्व में ले जाकर पुनः अन्य वेदियों में नहीं उत्पन्न कराया। ऊपर के गुणस्थानों में भी यही कारण कहना चाहिए, वहां भी जब कहेंगे उसका अंतर समाप्त होता है तो उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। पुरुष वेदी प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों का भी अंतर पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है, केवल इनमें जो विशेषता है उसे जानकर कहना चाहिए। विशेषता ने वहां तो पंचेंद्रिय की अपेक्षा कही थी, यहाँ पुरुष वेद की मुख्यता है, तो वो जो काल होगा पुरुष वेदियों की उत्कृष्ट स्थिति, ये इसके लिए लेंगे, वहां हमने पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति ली थी, उसमें कौन सा वेद है उसकी बात नहीं की थी स्टार्टिंग में, तो ये बात यहाँ इसमें डिफरेंस हो गया। हाँ, 201 वाली, दोन्नम उवसामगाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चोगम, पुरुषवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानों का अंतर ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है। ओघ में कितना अंतर देखा था हमने उपशामकों का? जघन्य एक समय उपशामक और अधिक वर्ष पृथक उत्कृष्ट अंतर नाना जीवों की अपेक्षा। अब एक जीव की अपेक्षा कहीं एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतमोत्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यह सूत्र सुगम है। अब उत्कृष्ट कहेंगे उक्कसेन सागरोम शतपुदत्तम। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है। ये कैसे होगा? जब स्टार्टिंग में ये जो पुरुष वेदियों की स्थिति है ना, तो स्टार्टिंग में उपशम श्रेणी मानकर उतरा, आठवें से नीचे आते ही अंतर चालू हो गया, फिर भटका और पुरुष वेदियों के साथ वो सागरोपम शतपृथक्त्व काल बिताकर अंतिम भव में फिर उसने वो उपशम श्रेणी मान ली, तो जब आठवें में आया तो अंतर उसका समाप्त हुआ। ये समझाया आगे देखो। जैसे मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव पुरुष वेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अभी हमको आठवां नवा गुणस्थान है, इसलिए मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। आठ वर्ष का होकर सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, फिर अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर, दर्शन मोहनीय का उपशमन कर, यानी द्वितीय उपशम हुआ भी, फिर अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, पुनः लौटकर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण होता हुआ नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। उसमें से सातवें में आते ही अंतर शुरू हुआ। सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण परिभ्रमण कर, आगे सागरोपम शतपृथक्त्व परिभ्रमण उसका हुआ, फिर कृतकृत्य वेदक सम्यक्ति होकर अंतिम भव में, पहले वो क्षायिक हुआ, कृतकृत्य वेदक सम्यक्ति होकर संयम को प्राप्त कर अपूर्वकरण संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। यानी कृत्यकृत्य वेदक के साथ उसने उपशम श्रेणी चढ़ी। इसके ऊपर का कथन पंचेंद्रियों के समान है, यानी वो उपशम श्रेणी चढ़कर आएगा और तुरंत क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला जाएगा। इस प्रकार आठ वर्ष और 29 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति प्रमाण पुरुष वेदी अपूर्वकरण उपशामक का उत्कृष्ट अंतर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी इसी प्रकार से अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि 8 वर्ष और 27 अंतर्मूर्तों से कम सागरोपम शतपृथक्त्व इनका उत्कृष्ट अंतर होता है। अब आगे शपकों की बात करेंगे। दोन्नम खवानम अंतरम केवचीरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्येन एक समयम। पुरुष वेदी अपूर्वकरण संयत और अनिवृत्तिकरण संयत इन दोनों, उसमें एक काना ज्यादा हुआ मात्रा, काना काना, ये दोनों में है ना, दो लाइन चाहिए तो तीन आ गई। ये दोनों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। लगातार क्षपक श्रेणी मानते रहे तो फिर अंतर कम से कम एक समय का हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर देखते भी। उक्त सेना वासम साधिरेयम। उक्त दोनों क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर साधिक एक वर्ष है। स्त्रीवेदियों में कितना देखा था? वर्ष पृथक। और यहाँ अब ये ना, अकेले पुरुष वेदियों में कितना अंतर पड़ सकता है, ये बात है। बीच में नपुंसक वेदी जाएंगे, स्त्री वेदी जाएंगे, पुरुष वेदियों में अधिक से अधिक उत्कृष्ट अंतर पड़ा तो इतना पड़ सकता है। जैसे पुरुष वेद के द्वारा अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थान को प्राप्त हुए सभी जीव ऊपर के गुणस्थानों को चले गए और अपूर्वकरण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः 6 मास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव स्त्रीवेद के द्वारा ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। 6 मास का अंतर है तो अभी उसमें तो स्त्रीवेदी वाले आ गए सभी। पुनः 4 या 5 मास का अंतर करके नपुसक वेद के उदय से कुछ जीव क्षपक श्रेणी पर चले, अंतर तो पड़ा बीच में, फिर नपुसक वेदी आ गए। पुनः 1-2 मास अंतर कर कुछ जीव स्त्रीवेद के द्वारा क्षपक श्रेणी पर चले। इस प्रकार संख्यातवार स्त्रीवेद और नपुसक वेद के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर चढ़ा करके पीछे पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने पर साधिक वर्ष प्रमाण अंतर हो जाता है। यानी बीच में संख्याद्वार स्त्रीवेद वाले और पुरुष नपुसक वेद वाले ही चढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर 6 मास का अंतर होना असंभव है। इसका अर्थ क्या है? लगातार 6-6 मास का अंतर कैसे होगा? 6 मास के बाद उत्कृष्ट अंतर तो 6 मास होता है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही है, तो उतने ही जीव क्षपक श्रेणी भी चढ़ेंगे, है ना? तो मान लेते 6 महीने का अंतर पड़ा, तो जो 8 समय है उसमें 608 जीव तो जाएंगे मोक्ष। हाँ, तो उसमें स्त्रीवेद वाले आएंगे कभी, और हर टाइम वो 6 महीने का ही अंतर पड़ना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े कम अंतर में थोड़े जीव जाएंगे, बाकी बाद में जाएंगे, तो ऐसे करते करते वर्ष का अंतर पड़ सकता है, एक वर्ष और कुछ ज्यादा। इसी प्रकार लगातार 6 मास हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई जीव तो जाएंगे ही ना मोक्ष। हाँ, बाद में कम अंतर है, पूरा 6 महीने का नहीं लिया उसमें, कम अंतर वाला और अन्य अन्य वेद वाले उसमें ले लिया। मैक्सिमम अंतर 6 महीने का है, अपने टोटल 608 होनी चाहिए उसमें। इसी प्रकार पुरुष वेदी अनिवृत्तिकरण क्षपक का भी अंतर कहना चाहिए। कितनी ही सूत्र पोथियों में पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर 6 मास पाया जाता है, ये बात लिखी आपको कहीं कहीं लिखी है ऐसी भी बात। अब एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, दोनों क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि क्षपकों का पुनः लौटना असंभव है, वापस लौटते तो अंतर पड़ जाता। अब 900 वेदीयेषु मिच्छादिच्छिन्नम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्च नथ्यंतरम निरंतरम। नपुसक वेदियों में मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। तो मिथ्यादृष्टियों में कौन से वेद वालों की मेजोरिटी है? क्यों? सारे एकेंद्रीय अनंत जी उसी में पड़े हैं। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमोत्तम, एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्यादृष्टियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। यानी नपुसक वेदी है, मिथ्या तो गुणस्थान है, अन्य गुणस्थान में गया, वापस आ गया, तो जघन्य एक अंतर्मूर्त होगा। ये तो अन्य जीवों की अपेक्षा बताएं, एक जीव की अपेक्षा है, अन्य जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं है। अब उत्कृष्ट कितना है? उक्कसेन 33 सागरोवमाणि देशुनानि, एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्यादृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। वो कैसे है वो अभी हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते